पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही रुद्र के साथ नहीं रहना चाहती थी। इस अध्याय में रूही को रुद्र की शर्तों को मानने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वो अनाथों की मदद कर सके। रूही सिंघानिया विला जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो कुछ शर्तें रखती है। दिशा रूही को ढूंढते हुए देवांश से मिलती है, जो उसे बताता है कि वो अनाथ आश्रम को खरीदने वाले व्यक्ति को जानता है। अब आगे चैप्टर 81। अब आगे रुद्र के फार्म हाउस में। वहीं रुद्र रूही की सारी बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ देर यूं ही हंसने के बाद वे अचानक अपनी हंसी रोक रूही को अपनी जुनूनी नजरों से देख उसकी कमर को पकड़ अपने करीब कर उसके होठों को सहलाते हुए बोला, रूह तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी ये बेफिजूल की शर्त को मेरे सामने रखोगी और मैं उन्हें मान लूंगा? तुम्हें सच में लगता है रूह कि मैं तुमसे दूर रह पाऊंगा? तुम मेरी बेवी हो रूह, और मैं अपनी बेवी को प्यार करने से खुद को नहीं रोक सकता। तुम भले ही मुझे खुद पर बेहक दो या ना दो, पर मैं अपना हक तुम्हारे ऊपर जरूर लूंगा, क्योंकि मुझे अपना हक लेना बहुत अच्छे से आता है रूह। मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। रही बात तुम्हें खुद के पास कैद रखने की, तो रूह तुम हमेशा मेरी कैद में रहोगी। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम तब तक ही खुद को आज़ाद महसूस कर सकती हो जब तक तुम मेरी सारी बातों को एक अच्छी बच्ची की तरह मानो और मुझे किसी भी बात पर गुस्सा मत दिलाओ। वरना रूह, अभी तक मैंने तुम्हें आज़ाद ही छोड़ रखा है। बस तुम मुझे खुद को कैद करने पर मजबूर मत करना, वरना रूह मैं तुम्हें क्या तुम्हारी सांसों को भी कैद कर लूंगा। तुम सांस लेने के पहले भी मुझसे परमिशन लोगी। इतना बोल वे रूही के गुलाबी होंठों को अपनी नीली गहरी आंखों से देखने लगता है। वहीं रूही रुद्र की इस तरह की बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और रुद्र को खुद से दूर करते हुए अपनी डरी हुई निगाहों से रुद्र को देखते हुए कहती हैं, दूर हटिए मुझसे, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना। मुझे आपकी इन सारी बातों से काफी ज्यादा डर लगता है। आप मुझसे इस तरह की अजीब बातें क्यों करते हैं? कोई किसी की सांसों को कैद कैसे कर सकता? रूही की बात सुनकर रुद्र रूही को देखे गहरी स्माइल के साथ बोला, माय इनोसेंट रूह, तुम सच में इतनी ज्यादा इनोसेंट हो ये मुझे नहीं पता था। पर अगर तुम्हें जानना है कि लोग कैसे दूसरे की सांसों को भी कैद कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ। इतना बोलवे रूही के करीब पढ़ने लगता है, जिसे देख रूही रुद्र को देखते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं जानना। तुम मुझसे दूर ही रहो। तुम प्लीज मुझे और उस अनाथ आश्रम दोनों को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। रूही की बात सुनकर रुद्र गुस्से में आ जाता है और वे रूही को देख अपनी खतरनाक आवाज में बोला, रूह अब मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुमसे दूर रहने के अलावा तुम मुझसे अपनी केवल एक बात मनवा सकती हो। मैं उस बात को मना नहीं करूंगा, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। पर एक बात याद रखना रूह, अगर तुम यहाँ से बिना मेरी बात माने गई तो तुम्हें उस अनाथ आश्रम की जगह सिर्फ धूल और मिट्टी ही नजर आएंगी, क्योंकि तुम्हारे इस फार्म हाउस के निकलते ही मैं उस अनाथ आश्रम को बम से उड़वा दूंगा और उन अनाथ लोगों को भी मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है। इतना बोल वे अपनी गहरी नजरों से रूही को देखने लगता है। वहीं रूही रुद्र की बात सुनकर उसे अपनी आंखों भरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम सच में काफी ज्यादा हार्टलेस हो, तुम्हें उन पर दया नहीं आ रही। रूही की बात सुनकर रुद्र अपनी कठोर आवाज में बोला, रूह ये दुनिया ऐसी ही है, सब तुम्हारी तरह यहाँ अच्छे नहीं है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। रूह अब जल्दी से अपना फैसला बताओ कि तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं, क्योंकि तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। रुद्र की बात सुनकर रूही उस अनाथ आश्रम को याद करती है और उन अनाथ लोगों और दिशा के बारे में सोचने लगती है। वे सिर्फ अपनी वजह से उन लोगों को बेसहारा नहीं कर सकती थी, इसलिए वे रुद्र को देखते हुए कहती हैं, मुझे तुम्हारी सारी बात मंजूर है, लेकिन मैं अभी भी पढ़ना चाहती हूँ, तुम मुझे पढ़ने से नहीं रोक सकते। रूही की बात सुनकर रुद्र रूही के करीब आ उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है रूह, तुम कॉलेज जा सकती हो, पर मेरी कुछ शर्तें हैं जिसे तुम्हें मानना होगा, तभी मैं तुम्हें कॉलेज जाने दूंगा। रूही के पास रुद्र की बात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वे अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देख रुद्र रूही से बोला, रूह तुम कॉलेज तो जा रही हो, मगर वहाँ तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी, ना कि फालतू चीज़ों पर। और वहाँ पर तुम सिर्फ लड़कियों से दोस्ती कर सकती हो, वे भी सिर्फ एक दो लड़कियाँ, उसके ज़्यादा नहीं। मुझे तुम्हारा कोई लड़का दोस्त नहीं दिखना चाहिए, ना ही कोई लड़का तुम्हारे आसपास भटकते हुए दिखना चाहिए, वरना ये बात ना उस लड़के के लिए सही होगी ना ही तुम्हारे लिए। तुम कॉलेज खत्म होने के बाद सीधा घर आओगी। अगर तुम्हें कुछ जरूरी काम से कहीं जाना भी हो तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल कर मुझे इन्फॉर्म करोगी। साथ ही साथ मेरे कुछ बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ कॉलेज जाएंगे। अगर तुम इन सारी बातों को मानती हो तो मैं तुम्हें कॉलेज जाने की परमिशन दूंगा। रूही जब रुद्र के इतने सारे रूल को सुनती है तो उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है, मगर वे जानती थी कि इस समय पूरी की पूरी बाजी रुद्र के हाथों में है, इसलिए वे ना चाहते हुए भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देख रुद्र रूही के गालों को थपथपाते हुए बोला, ये हुई ना मेरी रूह वाली बात। वैसे रूह, मुझे तुम्हारी एक चीज पसंद नहीं आई। तुम मुझे बार बार तुम कहकर बुलाती हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए तुम आज से मुझे आप कहकर बुलाना। रुद्र की बात सुनकर रूही गुस्से में अपने दांत पीस लेती है, क्योंकि वे साफ साफ देख सकती थी कि ये आदमी उसकी मजबूरी का फायदा काफी अच्छे से उठा रहा है। वहीं रुद्र रूही को कोई जवाब ना देता देख अपनी थोड़ी तेज आवाज में बोला, रूह तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी, मुझे उसका जवाब नहीं मिला। रूही की बात सुनकर रूही गुस्से में बोली, जी मैं आज से आपको आप कहकर ही बुलाऊंगी, अब क्या मैं जाऊं, दी मेरा इंतजार कर रही होंगी। रूही की बात सुनकर रुद्र बोला, रूह तुम अपनी दी की चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम्हारी दी कहीं और ही बिजी है। तुम जाओ और कपड़े चेंज करके मेरी बीवी की तरह रेडी होकर आओ, क्योंकि अब तुम यहाँ से सीधा सिंघानिया विला जाओगी। रही बात अनाथ आश्रम की, तो अब उन लोगों को कोई भी परेशान नहीं करेगा। रूही की बात सुनकर रूही कन्फ्यूजन से बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मेरी दी कहाँ बिजी है?
रूही के फिर से तुम्हारे बोलने पर रुद्र उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है, जिसे देख रूही समझ जाती है कि ये इंसान उसे इस तरह क्यों देख रहा है। इसलिए वे रुद्र को मन ही मन बुरा भला बोलने लगती है, क्योंकि वे ये सब रुद्र के मुंह पर नहीं बोल सकती थीं।